पृष्ठ संख्या 91, जापान। विस्तारवादी नीति। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब जापान का आधुनिकीकरण आरंभ हुआ, तभी से विस्तार की ललक उसके इतिहास की एक खास विशेषता रही। प्रथम विश्व युद्ध के ही समाप्ति पर उसने जो औपनिवेशिक लाभ प्राप्त कर लिए, उनका उल्लेख किया जा चुका है। उसने वाशिंगटन में जो संधि की थी, उससे उसकी नौसेना के विकास पर रोक जरूर लग गई थी, लेकिन तब भी वह प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बना रहा। कुछ काल तक चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक उपायों के सहारे जापान अपने प्रभुत्व को शांतिपूर्ण ढंग से फैसले की नीति पर चलता रहा, लेकिन चीन के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन के जोर पकड़ लेने और चीनी साम्यवादी दल का प्रभाव बढ़ जाने से यह खतरा पैदा हो गया कि जापान चीन पर अपने नियंत्रण का विस्तार नहीं कर पाएगा। उसका एक प्रमुख लक्ष्य चीन के एकीकरण को रोकना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान की पहली बड़ी आक्रामक कार्रवाइयों में से एक यह थी कि 1931 में उसने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और बाद में वहां एक कठपुतली सरकार प्रतिष्ठित कर दी। उसके बाद 1937 में उसने चीन पर एक भारी आक्रमण किया। 1938 में जापान ने जर्मनी के साथ कोमिंटर्न के खिलाफ एक संधि की। उसकी महत्वाकांक्षी योजना पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की थी, जबकि इटली के साथ मिलकर जर्मनी बाकी की दुनिया में यही करने का मंसूबा बना रहा था। युद्ध के बाद जापानी अर्थव्यवस्था का विकास जारी रहा और वह सूती कपड़े, रियान तथा कच्चे रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। कच्चे माल, मशीनों तथा खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता ने उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ कमजोर जरूर बना दिया था। इससे उत्पन्न कुछ समस्याओं को हल करने के लिए उसने अपने लोहा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरी उद्योगों का खूब विस्तार किया, लेकिन जापानी उद्योगपति और राजनीतिक तथा सैनिक नेता जापान की समृद्धि के लिए चीन के संसाधनों तथा सामग्री को अपने कब्जे में करना आवश्यक मानते रहे। राजनीतिक दमन। जापान का औद्योगिक विस्तार श्रमिकों के घोर शोषण की बुनियाद पर हुआ। उद्योगों और बैंकों पर जैबत्सु नामक मालदारों के एक छोटे से गुट का नियंत्रण स्थापित हो गया था। जैबत्सु का जापानी सरकार और राजनीतिज्ञों से अंतरंग संबंध था। श्रमिकों की रहन-सहन की अवस्था दयनीय थी, किसानों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उनमें से ज्यादातर लोगों के पास एकड़ दो एकड़ की बहुत छोटी छोटी जोते थी। उनमें बहुत बड़ी संख्या रैयतों के रूप में काम करने वालों की थी। जापानी कृषि ना तो जापान की बढ़ती हुई आबादी के दबाव को रोक पाने में समर्थ थी और ना देश की खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पूरी करने में। देश में व्यापक असंतोष और अशांति फैल गई थी। 1919 में चावल की ऊंची कीमतों को लेकर देश में चारों ओर अशांति फैल गई। मजदूरी सामान्यता इतनी कम थी कि श्रमिक इन कीमतों पर चावल खरीद ही नहीं सकते थे। इस अशांति को आमतौर पर चावल विद्रोह कहा जाता है। कारखानों, अमीरों के घरों और चावल के व्यापारियों की दुकानों पर हमले किए गए और उन्हें जला दिया गया। 1920 के दशक में हड़तालों का भारी दौर चल पड़ा और श्रमिक संघों का जोर बढ़ने लगा। साम्यवादी और समाजवादी लोकतांत्रिक दलों का गठन हुआ, जिन्होंने श्रमिकों तथा किसानों को अत्याचारपूर्ण अर्थतंत्र के खिलाफ संगठित करने की कोशिश की। इन दलों ने जापान की जनता को साम्राज्यवाद तथा युद्ध की नीति के विरुद्ध भी जागृत किया, लेकिन उन्हें और इसी तरह के अन्य श्रमिक संघों तथा कृषक संगठनों को कड़ी मजबूती तथा कठोरता से दबा दिया गया। खतरनाक विचारों को दबाने के लिए 1925 में शांति रक्षा कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार शासन के स्वरूप में परिवर्तन करने या निजी संपत्ति के उन्मूलन की हिमायत करने वाला कोई संगठन बनाने वाले या ऐसे किसी संगठन में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस तरह की दमन नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप खड़े होने वाले प्रश्नों तथा अन्य राजनीतिक समस्याओं पर सैद्धांतिक परिचर्चाओं के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई। जापान में सैनिक फांसीवाद। 1920 के दशक में जापान संसदीय शासन व्यवस्था की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता प्रतीत हो रहा था। 1924 में सभी पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया, लेकिन स्त्रियों को अभी भी इससे वंचित रखा गया। कुछ समय तक सरकार असैनिक तंत्र के अधीन काम करती प्रतीत हुई, तथापि सेना के देश के राजनीतिक जीवन में एक प्रमुख शक्ति बनी रही और 1930 के दशक के आरंभ से सरकार पर उसका वर्चस्व लगातार बढ़ता ही चला गया। जब सेना ने सरकार पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं किया था, उस समय भी वह सरकार को खुलेआम चुनौती दे बैठती थी और सरकार असहाय देखती रह जाती थी। जापानी सेना जापानी समाज की सबसे प्रबल शक्ति थी। कई गुप्त समितियां गठित की गई थी जिनसे सेना के घनिष्ठ संबंध थे। वे सभी समितियां उदारवादी, शांतिवादी तथा लोकतांत्रिक विचारों का प्रहार करती आ रही थी। वे उग्र राष्ट्रवाद, जापानी संस्कृति की श्रेष्ठता तथा संस्कृति की शुद्धता को विदेशी प्रभावों से बचाए रखने के विचारों की हिमायत करती थी। वे शांति, समाजवाद तथा लोकतंत्र के विचारों को विदेशी विचार बताती थी और इनसे जापान को बचाए रखना आवश्यक बताती थी। जापान के राष्ट्रीय तत्व के संबंध में इन समितियों की अपनी कुछ खास धारणाएं थी। सम्राट पूजा का भाव उन सब में था। वे इस विश्वास का प्रचार करती थी कि सम्राट की खातिर मरने का मतलब अमर हो जाना है। उनके अपने शस्त्र अस्त्र गिरोह थे जिनके जरिए वे राजनीतिक हत्याएं करवाती थी। जापान के सशस्त्र बलों द्वारा बहुत से राजनीतिक नेताओं की विचारधारा को रूपाकार देने का काम इन समितियों ने किया। साम्यवादी एवं समाजवादी लोकतांत्रिक दलों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक शक्तियां जापान के साम्राज्यवादी विस्तार को एक वांछनीय लक्ष्य मानती थी। दो युद्धों के बीच जापानी सरकार द्वारा अपनाई गई दमन नीति के कारण उक्त दोनों दल बिल्कुल दरकिनार हो गए थे। जो राजनीतिक प्रणाली जापान में उभरी उसे सैनिक फांसीवाद कहा जा सकता है। अस्पष्टता जर्मनी और इटली की फांसीवादी सरकारों से उसकी मित्रता बढ़ती गई। 1926 में हिरोहितो को उत्तराधिकार में जापान का सम्राट पद मिला। 1868 में जिस सम्राट के अधीन जापान का आधुनिकीकरण आरंभ हुआ था, उसके शासन को मेजी अथवा प्रबुद्ध शासन कहा जाता था। सम्राट हिरोहितो ने अपने राजत्व के लिए सोवा उपाधि अपनाई, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध शांति।